ओम शांति। सबसे पहले जब मैं इस ज्ञान में आया था 1967 में, उसके दो साल के बाद मेरा मधुबन आना हुआ। मैं जब मधुबन आया तो उस समय तो बहुत थोड़े लोग थे और दादी जी से मिलना बहुत आसानी होता था, जब चाहिए दादी जी से मिल लीजिए। और जब मैं ज्ञान में आया तब से ही दादी जी के साथ मेरा संबंध रहा। मैं हमेशा दादी जी को पत्र लिखा करता था, तो दादी जी से बहुत अच्छा प्यार था। मैं जब आया 1969 में, लेकिन वही था कि बाबा अव्यक्त हो चुके थे। मैं जुलाई में आया, उस समय हम बीएससी के स्टूडेंट थे, तो छुट्टी थी तो मैं आया था। फिर करीब 15 दिन मैं यहाँ रहा था। 15 दिन रहने के बाद जब मुजफ्फरपुर आया तो फिर भी मैं दादी जी से हमेशा पत्र व्यवहार करता रहता था। ऐसे करते हुए साल में दो साल में आता रहा, लेकिन एक समय आया जब 88 में मैं सोचा कि अभी कुमार लाइफ है, और परिवार से तो मैं शुरू में ही अलग हो गया था, अकेले हो गया था मैं। तो फिर सोचा कि दादी जी को बोलें कि मैं मधुबन में रहूं। दादी जी को मैंने कहा, दादी जी अभी मुझे मधुबन में रहना है। तो दादी जी बोलती, नहीं मधुबन में रह के क्या करोगे, वहां पर हमारे पास 2-3 फैक्ट्री मैंने अपने से शुरू किया था, और सारी सेवा पहले जो कुछ भी हो, पहले सेंटर, पहले बाबा की सेवा, उसके बाद कुछ और हो, शुरू से लक्ष्य रहा। तो दादी जी को बहुत प्रेस किया, बहुत कहा, लेकिन दादी जी मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन दादी जी जब उस समय तो शुरू में गोसुन कमसुन की टोली दादी देती थी, तो जिस दिन दाना था उसके एक दिन पहले शाम को दादी जी से जाकर के मैंने फिर भी कहा कि दादी जी अब तो छुट्टी दे दीजिए, तो दादी जी फिर भी ना करती रही। लेकिन सुबह सुबह जब जाना था तो उस समय जब टोली लेने गया तो फिर दादी ने बोली, तुम बहुत जिद करते हो ना, इसलिए दादी तुमको अभी छुट्टी दे रही है, जाओ सब समेट करके आ जाओ। तो फिर मैं यहां से गया और फिर समेट वगैर करके मैं वहां से चलने की तैयारी किया। तो फिर मेरे पास उस समय गाड़ी भी थी, तो मैंने दादी को फोन किया कि दादी हमको एक ड्राइवर चाहिए मधुबन का, जो मैं गाड़ी ले करके ही मैं मधुबन आ जाऊं। तो दादी बोली कि अच्छा गाड़ी लेके आना है हम, कि हाँ। फिर दादी ने यहां से ड्राइवर भेजी, और फिर उस गाड़ी से जो भी था सामान उमान लेकर के मैं यहाँ आ गया। अभी उसके बाद यहाँ भी कनेक्शन मैं दादी से ही ज्यादा रखता था, तो जो भी सेवा दादी बोलती थी वो मैं करता था। शुरू शुरू में जैसे गेट पर पहरे का सेवा होता है, फिर उसके बाद कुछ दिन म्यूजियम भेजी, फिर पीस पार्क भी भेजी। ये कुछ दिन चलने के बाद फिर जब ज्ञान सरोवर का शुरुआत हुआ तो दादी ने फिर बोला कि राजेंद्र अभी तुमको ज्ञान सरोवर सेवा करने जाना है। हम कि जी दादी जाऊंगा। तो उस समय तो ज्ञान शुरू हुआ था, सारा पेड़ काटना, पत्थर इधर उधर करना, सब कुछ यही चलता रहा, और बहुत दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो दादी ने कहा कि अभी यहाँ पर स्टोर संभालने की जिम्मेवारी आपको लेनी है। हम कि ठीक है। तो हम तो सुबह जाते थे, फिर शाम को रात को आते थे। ऐसे कुछ दिन चलने के बाद फिर दादी ने देखा कि इतना समय हो जाता है, देर आता है, तो फिर दादी ने खुद बोला कि अच्छा तुमको एक मोटरसाइकिल दे देता हूँ। हम कि ठीक है। फिर दादी ने मोटरसाइकिल भी दिया। फिर उस समय मोटरसाइकिल में ठंडी भी लगती थी, दादी ने विदेश का एक रेनकोट उस समय दिया कि नहीं ये पहन करके जाया करो तो ठंडी से बच जाओगे। ऐसे करके दादी ने देखा कि दादी का कितना प्यार था और खास करके कुमारों के प्रति। ऐसे भी दादी बोलती थी कुमारों का मैं कुमार का हूं। तो ऐसे करके जब ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ तो दादी का देखते थे एक लक्ष्य होता था कि दादी जो कहती थी वो सारे लोग करने को तैयार हो जाते थे। जो दादी समय दे देती उस समय पर वो काम होना ही होना है, क्योंकि दादी का ऐसा प्यार था ना कि हर कोई उसमें निछावर हो जाते थे। और एक दिन दो दिन बीच करके जबकि रास्ता भी इतना वहां दिक्कत था फिर भी दादी जरूर जाती थी, और दादी जाती थी तो फिर लोगों में उमंग उत्साह इतना बढ़ जाता था। चाहे कोई भी इंजीनियर हो कोई भी हो, जो दादी बोले कि भाई आज इस छत का ढलाई होना चाहिए, जी दादी, और उस समय से एक दिन पहले वो पूरा होता था। दादी जी का इतना अच्छा लोगों के साथ व्यवहार कहिए, संबंध कहिए, प्यार कहिए, कि उस प्यार में सब कोई दीवाने हो जाते थे। दूसरी बात, दादी जी एक बार ज्ञान सरोवर का ही जब शुरुआत हुआ था तभी दादी जी को एक प्रेस वाले ने पूछा कि दादी जी इसमें इतना खर्चा होगा, करोड़ों रुपया खर्चा होगा, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। दादी जी ने उसका कितना सुंदर जवाब दिया था। दादी बोले कि हमारे पास 3 लाख स्टूडेंट हैं पूरे भारतवर्ष में, और अगर मैंने 1 रुपया भी अगर डेली हमारे स्टूडेंट डालेंगे तो 3 लाख रुपया पे एक दिन का हो गया। तो अब सोच लो 30 दिन में कितने होंगे, 30 लाख हो गए। अब सोच लो साल भर में कितने हो गए, करोड़ों रुपया हो जाता है। तो इस तरह से दादी ने ये उदाहरण दिया तो पत्रकार भी आश्चर्य कर गए कि देखिए एक छोटी सी रकम, और कोई कोई ऐसे भी भाई थे जो ये किया 10-50-100 भी करने वाला थे जो कर सकते हैं। तो ऐसे करके दादी ने जवाब दिया और ऐसे करके धीरे धीरे ये ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट तैयार हुआ। जब ज्ञान सरोवर हो गया तो उसके बाद दादी ने हमको बोला कि राजेंद्र अभी ज्ञान सरोवर आप यही रहो, अभी पांडव भवन अभी छोड़ के यहाँ रहो। लेकिन हमारा दिल कभी नहीं मानता था। मैं बोला दादी नहीं, मेरे को पांडव भवन ही रहने दीजिए, आप जितने बजे बोलिएगा मैं जाऊंगा, जो सेवा कहिएगा मैं करूंगा, लेकिन हम पांडव भवन ही हमको रहने दीजिए। फिर दादी ने चलिए मान ली बात, बोलिए सर ठीक है चलो यहीं से सेवा करने जाओ। तो वहां से मैं डेली जाता था, सुबह स्टोर खोलता सब कुछ करता, पर शाम को फिर वहां से आता था। ऐसे करने के बाद फिर मैं देखा कि दादी जी एकानामी भी कितना करती थी, एक एक पैसे के लिए दादी सोचती थी, एक चीज भी वेस्ट हमारा नहीं जाए। आज तो हम देखते हैं कि आज तो हम ये कंस्ट्रक्शन में कितने सारे पैसे बर्बाद होते हैं, बने बने मकान तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उस समय दादी एक छोटा सा भी कोई चीज थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं हो सकता था, इतना दादी का था और इकोनॉमी भी था। तो दादी ने उस समय देखा कि एक छोटी सी छोटी चीज के लिए, हम लोग को याद है कि दादी बोलती थी 1 महीने में 1 साबुन यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं यूज करना है, हम लोग उसको करते थे, आज तो ऐसी बात ही नहीं है। तो कितना कितना दादी इकोनॉमी करती थी, और उसमें भी लच्छू दादी तो दादी से भी बढ़ करके थी। वो तो एक देना है तो एक ही मिलेगा। तो इस तरह से जब सारा ज्ञान सरोवर पूरा तैयार हो गया, इसके बाद बाड़ी आई शांतिवन की। शांतिवन की बाड़ी आई तो फिर वही मीटिंग हुआ यहाँ पर कि भाई अभी वहाँ कौन क्या जाए, कैसे क्या करेगा। तो वहाँ भी यही प्रश्न था, हमको दादी बोली कि आपको ही इसमें आगे जाना होगा, नीचे जाना होगा। अब मेरे साथ तो फिर वही समस्या हुआ, हमको मधुबन छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होता था। फिर दादी को वहाँ भी मैंने बोला, मीटिंग हुआ तो मैंने बोला दादी मैं यहीं से जाऊँगा, डेली काम करके आऊँगा, लेकिन मैं यहीं रहूँगा। फिर दादी उसके लिए भी तैयार हुई। फिर दादी ने स्पेशल एक गाड़ी दे दी और छाया भाई जो ग्लोबल में है, हम दोनों आदमी यहाँ से साथ जाते थे और फिर साथ दोनों ही आदमी आते थे। ऐसे करके शांतिवन भी पूरा हुआ, सब कुछ हुआ। इसके बाद तीसरी बारी आई शांतिवन के बाद ORC का। अच्छा, ORC का जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, ORC में ब्रिजमोहन भाई सारे लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ पर एक दिन दादी ने मीटिंग रखा उसके लिए, और मीटिंग में दादी ने बोला कि आपको इस मीटिंग में आना जरूर है। लेकिन हमको लोगों ने बोला कि आज तो आप नहीं बच पाएंगे, आज तो आपको दादी वहाँ के लिए फाइनल कर ही देगी। मैंने क्या सोचा कि छोड़ो आज मीटिंग में जाएंगे ही नहीं, और मीटिंग में मैं नहीं गया। तो दादी ने पहरे पर बोल दिया कि राजेंद्र जिधर दिखे उसको पहले मेरे पास लेके आना। अब मैं तो बहुत डर गया कि आज तो अब क्या होगा पता नहीं। अब हुआ क्या कि लोग हमको बोले कि दादी आपको याद कर रही है। अब बोले कि कहाँ है दादी, लेकिन मैं छुप छुप के रह रहा था। तो फिर देखा कि दादी तो सामने ही बैठी हुई है, और सामने दादी बैठती थी। तब धीरे धीरे डरते डरते मैं गया, और दादी तो डांटती तो नहीं थी, लेकिन आँख ही दादी ऐसे करते थे कि लोग समझ जाते थे कि दादी अभी गुस्से में है। फिर दादी ने बोला कि कहाँ गए थे, हम कि दादी यही था, तो मीटिंग में बुलाया था ना, क्यों नहीं आए मीटिंग में। फिर मैंने दादी को बोला, दादी मुझसे गलती हो गई, मैं सोचा कि हमको आप बोलेंगे नीचे जाने के लिए, वार्ड से जाने के लिए, इसलिए मैं नहीं आया। तो बोली दादी कि कोई बात नहीं, मीटिंग में आना चाहिए ना, उस समय बोल सकते थे ना, इसमें क्या है। लेकिन ना आना तो दादी की बात को नहीं माना ना, क्योंकि दादी हमसे गलती हो गई, अभी आगे नहीं होगा। फिर दादी ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं जाओ, ऐसे करके दादी ने उसे मुक्ति दिला दी। फिर जब वहाँ शुरुआत हुआ, शुरुआत के समय, शुरुआत शुरू होने से पहले भी, फिर दादी वहाँ बोली थी कि चलो एक बार वहाँ आना तो जरूर। तो दादी भी गई थी तो हम लोग भी गए थे, हम गोलक भाई सारे लोग साथ ही गए थे। फिर सारा उसमें एक बार दो बार गए थे उसमें देख करके, हम लोग आए थे। तो वही कहने का मतलब है कि दादी कितना एक दूसरे के साथ प्यार करती थी, एडजस्ट करके चलती थी, किसी को थोड़ा भी नाखुश हो ऐसा नहीं दादी करती थी, इतना दादी का ये था। और दादी का तो खैर कितना मतलब सारे देश विदेश में दादी ने जो सेवा की वो तो कोई कर नहीं सकता है। बाबा के जाने के बाद दादी को जो बाबा ने अपना हाथ में हाथ दे दिया, वो सारी शक्ति बाबा ने दादी को दे दी, और दादी ने उसके बाद देश विदेश में कितनी सेवाएं बढ़ाई। आज उनका ही देन है क्या सारे संसार में आज इतने सारे सेंटर खुले, नहीं तो बाबा के समय तो इतने सेंटर भी नहीं थे। तो वही कहने का मतलब है कि दादी जितनी इकोनॉमी से चलती थी, जितनी लव था उनके साथ, उतना ही लव भी था दादी के साथ, दोनों दादी के साथ था। प्यार भी करती थी और फिर वो थोड़ा अधिकार भी रखती थी। तो इस तरह से दादी ने इस यज्ञ को चलाया, और हम सबको भी आज दादी के उस मार्ग पर चल करके यज्ञ को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन आज हम बहुत सारे देखते हैं लोगों को, तो हमको बहुत कभी कभी तकलीफ भी होती है कि हम बाबा के घर में किस लिए आए थे और ये क्या कर रहे हैं। आपस में वो प्यार आजकल नहीं देखने को मिलता है, उससे नहीं चाहिए, सोचने नहीं है। एक दूसरे अगर कोई गलती करता है तो सोचते हैं उसको और गलती करे, किसी तरह से उसको बदनाम करे। लेकिन हमारे यज्ञ का तो ये कायदा नहीं, नियम नहीं है, और हमको जब भी देखते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि कम से कम कुछ भाई बहने भी अगर इसमें शामिल हो जाएं तो हमारा यज्ञ बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरह से मैं देखा कि दादी जी जब शुरू शुरू में मैं जब यहाँ ज्ञान में जब आया था, और दादी जी ने हमको जब यहाँ बुलाया था, तो मैं देखा कि दादी हमको कहती थी कि देखो, बीच बीच में पूछती थी कि घर याद तो नहीं आता है, घर से तो पहले ही हमारा संसार खत्म था, मैंने तो 2 साल के बाद ही घर छोड़ दिया था। फिर बोलती थी वहाँ कारखाना वगैरह ये सब, कि दादी नहीं मैं वहाँ से आ गई, अब हमको कुछ याद नहीं आता है। तो दादी यही हमेशा हमको कहती थी, बस यही लक्ष्य रखना कि कुछ नहीं, एक बाबा और एक मधुबन यही याद रहे, और कुछ नहीं याद होना चाहिए। तो इस तरह से मैं देखा कि दादी के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा। एक दो और घटना है, एक बार मेरे को बहुत तकलीफ हुई, हार्निया का तकलीफ हुआ, और दादी भी इस हार्निया से पीड़ित रहती, दादी को भी 2-3 बार ऑपरेशन हुआ था। दादी को मैंने बोला कि दादी ऐसे ऐसे है, मैं पालनपुर जाना चाहता हूँ दिखाने के लिए। दादी ने कहा कि नहीं रुक जाओ, अशोक मेहता आने वाले हैं, मैं उनको बोलती हूँ। तो अशोक मेहता आए, दादी ने बोला कि ऐसे है, जरा इसको देख लीजिए। फिर उन्हें हॉस्पिटल बुलाया, मेरे को देखा, देखने के बाद फिर उसने हमको कुछ नहीं बोला, दादी को ही बोला कि दादी नहीं ऑपरेशन करना है। तो फिर उस समय डॉक्टर घोष थे, ऑपरेशन भी किया उन्होंने। फिर ऑपरेशन करने के बाद मैं देखा कि देखिए माँ से भी बढ़ के दादी का प्यार था। ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन सुबह सुबह ग्लोबल आ गई, और दादी ने हमको देखा, सारे दादी आई तो सारे डॉक्टर पीछे पीछे आ गए। सब लोगों को आश्चर्य लगा कि देखो दादी कितनी महान आत्मा है, ये छोटी सी बात के लिए भी दादी खुद आई, खुद देखी, डॉक्टर से बात की, भाई सब ठीक है, हमसे पूछी ठीक हो, हम कहा दादी ठीक हो। फिर दादी ने डॉक्टर लोगों को बोला कि भाई अच्छी तरह से देख रेख करना है। तो देखिए क्या कितना प्यार है, कहाँ ऐसा प्यार मिलता है। और इस प्यार के कारण ही तो यज्ञ में आज हम सब कोई हैं। और शुरू शुरू में क्या था, हम लोग भी ज्ञान में आए तो कोई ज्ञान ध्यान तो था नहीं, बस प्यार था। बहनों का इतना प्यार मिला कि उसके कारण हम खींच करके आ गए। इसके बाद भी देखा दादी, उसके बाद भी दो दिन के बाद फिर आई, फिर देखी। दो दिन के बाद क्या हुआ, हमको सिर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत बेहद दर्द, और डॉक्टर लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतना दर्द हो रहा है। दादी को मैंने बताया कि दादी ऐसे ऐसे है। दादी ने तुरंत प्रताप भाई को बोला किसी अहमदाबाद के डॉक्टर से कंसल्ट करो। फिर बोली ठीक है। इतना करने के बाद सब कुछ चले गए। फिर एक हिंदू बहन है, वो हमको बोली और आए और वहाँ बोली कि इसको करो, सिर को तुम नीचे कर दो और पांव को ऊपर कर दो इसको। उसने किया, उसके बाद धीरे धीरे दो घंटे मेरा दर्द खत्म हो गया। तो फिर मैं देखा कि दादी देखिए कितना लोगों के साथ अपनापन प्यार होता था। तो देखिए दादी का प्यार कितना था, उसके प्यार के कारण ही तो यज्ञ इतना बढ़ा। और आज दादी पर सारे लोग निछावर हैं, दादी जो कह दे जी दादी, उसमें जरा भी हिचक नहीं किसी को है। इस तरह से मैं देखा कि दादी का जो प्यार है वो बहुत अद्वितीय है, कोई नहीं कर सकता है वैसा प्यार। हाँ, पिकनिक के लिए दादी क्या करती थी, पिकनिक तो ऐसे तो पीक्स पार्क में हुआ ही करता था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जब गुलदार दादी को कहीं जाना होता था तो खास दादी बोलती थी एक के, तो दादी बोलती थी और दादी गुलदार दादी को गुल करके बोलती थी, गुल। तो दादी बोलती थी कि अच्छा आज दादी को कहीं ले जाओ पिकनिक में। तो कभी पालनपुर की बहनों से बात करते, कभी कहते किसी रिसोर्ट में कहीं ऐसे गार्डन होता था तो हम लोग दादी के साथ, गुलजार दादी के साथ दादी हम लोग को भेजती थी। और दादी इस ग्रुप के साथ बहुत मिलजुल करके रहती थी, बहुत घुल मिल जाती थी। दादी बोलती थी हाँ जो बनाओ जो खिलाओ सब खाएंगे। फिर वहाँ जाकर सब कोई कोई कविता बोल रहा है, कोई शायरी कर रहा है, और दादी के साथ ऐसे करके करते थे। बाकी बड़ी दादी तो थी यहाँ पीस पार्क में, तो दादी का हमेशा होता ही था, हमेशा साल में एक दो बार तो प्रणाम होता था, खेल कूद होता था, सब कुछ होता था। ये तो दादी ने सब कुछ कराया, माने ज्ञान के साथ दादी का हर चीज, बच्चों के साथ बच्चों बन जाना है, बड़ों के साथ बड़ों बन जाना है, सब दादी के साथ ऐसा चलता रहा है। हाँ वो तो रखती थी। या दादी में एक ये भी खूबी थी कि जैसे आज मधुबन में कोई गलती कर लेता है तो दादी उस समय पर्सनल किसी को नहीं कहती, वो दादी पूरे मधुबन वालों को ही क्लास कराती थी और पूरे मधुबन के क्लास में ही बोल देती थी, नाम नहीं लेगी लेकिन बोलती थी भाई ऐसे ऐसे किसी ने गलती किया है, इसलिए सबके ध्यान पर हो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई ऐसा काम जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई भी काम होता था तो उसमें भी दादी सारे लोगों को इकट्ठा करती थी और सब लोगों के बता करके सब लोगों के राय विचार जरूर दादी लेती थी। दादी में एक खूबी थी, अकेले दो चार लोग भोकर के डिसीजन नहीं लेना, सबको बताना है, सबके राय भी पूछती थी। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, पता नहीं कुछ गाड़ी घर में छोटी छोटी गाड़ियां थी मोटरसाइकिल वगैरह, तो एक बार कोई ऐसे ही चला गया, नीचे चला गया, कहाँ गया तो दादी को मालूम पिया। दादी ने क्लास मधुबन का रखा और दादी ने बोला कि देखो जितने भी गाड़ी है सब कुछ चाबी हमको दे दो। अब बहुत लोगों को तो लगा कि अब तो गाड़ी अभी नहीं मिलेगा अभी, तो हम लोग जाकर के दादी को चाबी दे दे ले ली गाड़ी चाबी। फिर दादी चाबी रख ली सबकी, फिर जिसको जैसे जरूरत हुआ दादी बाद में दूसरे दिन बुला बुला करके एक एक को चाबी दी, बोली कि लो ऐसे कभी नहीं करना, जब भी हो दादी को कहीं भी बता करके जाना है, ऐसे नहीं जाने का कहीं का। तो इस तरह से दादी छोटी छोटी बात के लिए भी बहुत ध्यान देती थी और दादी हर डिसीजन खुद ही कर देती थी और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए दादी का तो खैर कुछ
है।
हाँ वो तो दादी का साल में एक दो बार तो होता ही होता था, वो तो दादी एकदम किसी भी हालत में करना ही करना है, उसमें दादी नहीं। हाँ शिवर वाले चाहे आज भी दादी जब थी तो चाहे फॉरनर्स आते थे, बाबा का प्रणाम होता था, कुछ भी होता था, जानते हैं कि भाई जो लोग कुमार हैं चाहे कोई है वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं खा सकते हैं, तो दादी तो प्रणाम में ही बोल देती थी, क्लास में ही बोल देती थी। यहाँ भी दादी थी तभी बोलती थी, भाई आज चलो आज रसगुल्ला बना दो, आज इनको ये खिला दो, आज वो खिला दो, ये सब चीज दादी करती थी ना, तो इसलिए दादी सबके मन को जीत लेती थी। हाँ, 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 बस उसी समय हो जाता था। हाँ, तो दादी में तो ये पालना का संस्कार तो बहुत ये था, और दादी के रीजन में ही देखिए विदेश में कितने सारे सेंटर खुले, दादी जब गई तो कहाँ कहाँ एक साथ ही कितने 10-15 देश चक्कर लगा कर करके आ गई दादी। और दादी में ये भी था ना कि कोई भी बड़ा से बड़ा काम करना हो एक बार दादी बोल दी तो फिर पैसे की भी कमी नहीं होती थी, सारे लोग बस गुप्त दान कर देते थे, इससे बड़ा बड़ा काम भी हो जाता था, इस तरह से दादी का सारा ही चलता था। देखिए दादी का तो सबसे बड़ा था कि दादी जो मुरली जो थी ना दादी, वो मुरली कई बार दादी पढ़ती थी, दादी का ये सबसे बड़ा पुरस्कार था। सुबह भी पढ़ती थी, क्लास में आने के पहले भी पढ़ लेती थी, अच्छा दिन में जब दादी खाना पीना खा के सोने जाती थी तो भी पढ़ती थी, शाम को भी पढ़ती थी, दादी का तो ये सबसे बड़ा ये था। हम लोग चाहते भी हैं लेकिन नहीं हो पाता है, कभी दोबारा सोचते हैं थोड़ा सा, आजकल तो मोबाइल में थोड़ा देख लिया 2-4 पॉइंट बस हो गया, लेकिन दादी का इस पर बहुत बहुत अटेंशन होता था। नहीं मेरा तो शुरू से नहीं चल रहा है, आज तक कभी जब से मैं ज्ञान में आया तब से कभी भी मैं मुरली नहीं मिस किया हूँ, मेरा शुरू से लक्ष्य रहा है। और मुरली ज्ञान और योग के कारण ही मैं जब ज्ञान में आया था, मेरे को पर घर से इतना बंधन था, इतना बंधन था, उसको मैंने एक झटके से तोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान और योग। और मेरा शुरू से लक्ष्य रहा कि सेंटर पर मैं कॉलेज के लिए निकलता पहले सेंटर जाता, और सेंटर पर चाहे जो काम हो, झाड़ू करना हो, पोछा करना हो, बर्तन मांजना हो, पड़ोसी लगाना हो, माइक चलाना हो, भाषण करना हो, कुछ भी करना हो, सारा मैं करता था, कुछ भी नहीं छोड़ा सेंटर पर। और जिसके कारण मैं देखा कि इसके कारण ही बाबा ने हमको ये सारा मदद दिया, मदद किया, और उसके कारण मुजफ्फरपुर में रहा, वहां भी सब कुछ किया। और उसके बाद जो मेरा संकल्प था, जबकि पहले संकल्प नहीं था, हमको पहले बहुत लोग बोलते थे मजमन आप चले जाइए ना, कुमार हैं यहाँ क्या करते हैं, हम बोले कि नहीं मैं यही रहूंगा यहाँ, कम से कम तन से मन से धन से भी तो सेवा करता हूँ, मधुबन में तो जाऊंगा तो धन से तो सेवा नहीं करूंगा, ये पहले से मेरा लक्ष्य था, इसलिए मैं जाने का नहीं था। लेकिन पता नहीं अचानक मेरे को जब आया तब मेरे को एक बार आ गया कि भाई सोचा कि आखिर जीवन क्या होगा आगे चल करके, कोई मैं अकेले रहूंगा क्या करूंगा, इसलिए चलो मधुबन ही ठीक है ना, मधुबन चल जाए बस सबसे अच्छा है, मधुबन में रहेंगे अच्छा रहेगा, तो इसीलिए फिर लक्ष्य बनाया और फिर दादी से बात करके आ गया। उस समय दादी को मैं बोल दिया था, दादी जब छुट्टी नहीं दे रही थी रात को, मैं बोला दादी मैं अपना इंडस्ट्रीज बंद करूंगा, माउंट में आकर इंडस्ट्रीज खोलूंगा, यहाँ रहूंगा और मधुबन में नजदीक रहूंगा। जब दादी देखी ना कि इतना पर जिद हो गया, तब दादी सुबह सुबह बुला करके फिर बोल दिया था ठीक है दादी छुट्टी दे दी तुमको। हाँ वही दादी खिला दे सबको, दादी सबको दादी मुख में खिलाती थी कम से कम, कि चलो भाई दादी ने जो किया कम से कम हम भी तो करके दिखावे लोगों को, लेकिन कहाँ लोग करते हैं सब चीज। मेरा अपना ये लक्ष्य रहता है, शुरू से रहा है अभी भी रहता है, कि मैं हमसे किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन मेरा सेवा ऐसा है कि अब फैंसी सामान का है भाई किसी को कुछ चाहिए, अब उस समय नहीं देता हूँ तो मेरे मन में तो होता है उसको तकलीफ जरूर भाई को होता है, लेकिन मैं बोला भाई मैं तो बंदा हूँ ना, यज्ञ के नियम कायदे के अनुसार चलना है ना, आखिर क्या करें हम, तो ये लक्ष्य मेरा होता है कि किसी को हमसे कोई तकलीफ, जितनी हमसे माने लोगों को माने वो मिल सके, हमसे सहायता मिल सके मैं कर सकूं, ये मेरा शुरू से लक्ष्य रहा है। और एक लक्ष्य मेरा ये रहा है शुरू से रहा है कि हम हर कोई के साथ एडजस्ट करके हम चले। दूसरा मेरा साइलेंस हमको बहुत प्रिय है, हमको अकेले अगर कोई छोड़ देना, अकेले मैं अकेले 10 दिन कहीं भी अकेले रह सकता हूँ, किसी से बोलना जानना हमको ज्यादा पसंद नहीं आता, हमको बहुत साइलेंस प्रिय है, मेरे को ये बहुत पसंद आता है। बस अकेले, इसलिए देखिए हम इतना बरसात होगा कुछ भी होगा मैं ऊपर अकेले ही बैठा रहूंगा, कभी अपने झूले पर ही योग करता रहूंगा, ढाई बजे मेरा नींद खुलता है, ढाई बजे कभी ज्यादा बारिश होता है तो नीचे नहीं आता हूँ, तो हमारे ऊपर में झूला है जो विश्व रतन दादा बैठ करके बेचारे वहाँ योग भी करते थे, वहीं बैठ करके तपस्या करूंगा मैं बैठ करके। इसलिए मेरा ये लक्ष्य रहता है कि कोई हमसे पहले, सबसे है कि कोई हमसे दुखी नहीं हो, बस सबको हम सुखी कर सकें। लेकिन सेवा ऐसा होने के कारण मेरे को भी थोड़ा होता है, लेकिन चलिए हैं
बाबा ने 5% सुख दिए
इसीलिए मेरा तो एक पुरुषार्थ रहता है, और यही होता है कि भाई दूसरी यही होता है कि जितना हो सके आत्मअभिमानी का हम पुरुषार्थ करें, एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखें, इस पर मेरा ज्यादा अटेंशन रहता है। बाकी ये हमारा लक्ष्य शुरू से रहता है, मुरली कभी मिस नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओम शांति।